कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 10वीं पुस्तक दूसरा शमूएल का अध्ययन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इन अध्ययनों से अवश्य लाभ प्राप्त हो रहा होगा। श्रोताओं, इससे पहले कि आज का अध्ययन हम शुरू करें, आइए सुनते हैं एक मधुर गीत।
अपना मीत बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मतवाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मतवाले, जाग जरा मतवाले, जाग जरा मतवाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको फिर से एक बार मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम इन दिनों में शमूएल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि विद्रोह का दमन करने के बाद योआब राजा दाऊद के पास लौट आया। दाऊद ने अपने प्रशासन का गठन किया परंतु देश पर अकाल पड़ा। दाऊद ने यहोवा से इसका कारण पूछा तो यहोवा ने कहा कि वह शाऊल के खूनी कर्म के कारण हुआ है, क्योंकि उसने वाचा का उल्लंघन करके गिबोनियों को मरवा डाला था। दाऊद ने गिबोनियों को बुलवाकर पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। उन्होंने कहा कि उनके हत्यारे के वंश से 7 जन उन्हें दिए जाएं कि वे उन्हें फांसी दे। दाऊद ने मपीबोशत को छोड़ अन्य 7 जन उन्हें सौंप दिए और इसके बाद परमेश्वर ने वर्षा दी। मेरे मित्रों, दाऊद का अंतिम युद्ध पलिश्तियों के साथ हुआ। पलिश्तियों में गोलियत के 4 पुत्र थे परंतु वे मारे गए। दाऊद ने यहोवा के लिए इस समय एक भजन भी लिखा जो साहित्य की दृष्टि से एक उत्कृष्ट कलाकृति है। यह भजन संहिता का 18 भजन है। संभवतः इसी समय दाऊद ने भजन संहिता 23 भी लिखा। उसने अपने अतीत पर ध्यान किया तो पाया कि यहोवा ही उसकी चट्टान, उसका गढ़, उसका छुड़ाने वाला, उसकी ढाल, उसका सिंह, उसकी शरण और उसका उद्धार करता था और है और रहेगा। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा शमूएल की पुस्तक 23 अध्याय उसका 3 पद। इसराइल के परमेश्वर ने कहा है, इसराइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। मेरे मित्रों, दुख की बात है कि आज परमेश्वर के भय को मानते हुए निर्णय नहीं लिए जाते हैं। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की अपेक्षा मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर का भय मानने वाले अगुओं की आवश्यकता है। उनके अभाव में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हम दूसरा शमूएल 23 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। मेरे प्रियो, दाऊद के मुंह से निकला यह वचन अद्भुत है। आपको स्मरण होगा कि मैंने कहा था दूसरा शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय में बाइबल के अति उत्तम अध्यायों में से एक है। इस अध्याय में परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी। जिस पर मसीह का भावी राज्य आधारित है। इसी वाचा में दाऊद के घराने के वंश, राजसी सिंहासन और पृथ्वी पर सदा के राज्य की प्रतिज्ञा है। यह वही है जिसकी प्रतिज्ञा अदन की वाटिका में हवा को दी गई थी। इसी की प्रतिज्ञा अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को भी दी गई थी और इसके बारे में मूसा ने कहा था। यहोशू ने भी इसका उल्लेख किया है। अब दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा भी उसी के संबंध में है। आइए हम पढ़ें दूसरा शमूएल 23 अध्याय उसके 5 पद। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट न करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। मेरे मित्रों, दाऊद जो वह कह रहा है वह मात्र यही है, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है। दूसरे शब्दों में, मेरा घराना इस योग्य नहीं है, या हमने अपनी योग्यता से नहीं पाया है, या इसलिए नहीं होगा कि मैं कुछ हूं। यदि दाऊद योग्यता का पात्र होता तो परमेश्वर उससे कभी वाचा नहीं बांधता, न ही परमेश्वर आपका और मेरा उद्धार करता। यदि उद्धार हमारी योग्यता पर निर्भर होता तो हम इसे नहीं पाते। परंतु इसके उपरांत भी उसने दाऊद के साथ अनंत वाचा बांधी। परमेश्वर ने हमारे साथ भी वाचा बांधी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में यह वाचा व्यक्त है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे मित्रों, मैं इसी बात पर कहता हूं, परमेश्वर ने यह वाचा बांधी है। मैंने उससे कभी नहीं कहा कि वह वाचा बांधे। उसने वाचा इसलिए नहीं बांधी कि हम कुछ हैं। वह हमारे सुझाव के लिए नहीं रुका रहा। उसने 2010 वर्ष पूर्व यह वाचा बांधी थी। उसने कहा, यह चाहो तो स्वीकार करो या अस्वीकार करो, मैं तो इसे स्वीकार करता हूं और उस पर आश्रित हूं। दाऊद ने कहा कि यह वाचा सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं। दाऊद ने कहा, मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। मेरे साथ परमेश्वर की वाचा मेरा उद्धार है, यही मेरी अभिलाषा है। मेरे प्रियो, यही प्रत्येक विश्वासी की अभिलाषा होना है, चाहे वह प्रकट हो या ना हो। आगे हम देखते हैं दाऊद के शूरवीर। यहाँ दाऊद के शूरवीरों की नामावली है जिसे हम दूसरा शमूएल 23 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी, योशेवेशेत जो सरदारों में मुख्य था, वह इसनी अदीनी भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि ये वे योद्धा हैं जो दाऊद के पास उस समय आए थे जब वह शाऊल से दूर निर्वासन में था। उसे शाऊल तीतर की नाई खोज रहा था और वह गुफाओं में छिपा हुआ था। उस समय शाऊल के सताए हुए ये निराश जन दाऊद के पास आए थे। दाऊद के पास वे भी आए थे जो ऋणग्रस्त थे, कड़वाहट से भरे हुए थे और असंतुष्ट जन थे। इसी प्रकार मनुष्य मसीह के पास आते हैं, वे हताश मनुष्य होते हैं। अनेकों के पत्रों को पढ़ने पर पता चलता है कि अनेक युवा विद्रोही एक बार निराशा से घिरे हुए हैं। वे मुझे पत्र लिख करके व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि प्रभु के साथ अपने अनुभव उन्होंने कैसे प्राप्त किए हैं। वे पाप के ऋण से दबे हुए थे, अर्थात दबे हुए मसीह के पास आते हैं और मसीह ने उनके ऋण को क्षमा किया है। क्या आप जीवन से असंतुष्ट हैं? यदि आप भरपूरी का जीवन जी रहे हैं और उचित जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो मेरे विचार में मेरे पास आपके लिए संदेश नहीं है। परंतु यदि आप आत्मा की गहराई में असंतुष्ट हैं और उद्धार पाना चाहते हैं, परमेश्वर की संगति में आना चाहते हैं, तो मसीह के पास आ जाएं। वह आपका दोष क्षमा करेंगे और आपको एक संतोषपूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। दाऊद के पास आने वाले ये लोग अनेक प्रकार से असाधारण मनुष्य थे। उन्होंने अनेक असाध्य काम किए, तो आइए हम उनमें से कुछ को देखें। दूसरा शमूएल की पुस्तक 23 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, उसके बाद आगे नाम एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था, पलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिस्तियों को मार लिया और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। दाल का एक खेत बचाना कोई महत्वपूर्ण बात प्रतीत नहीं होती है, परंतु इसराइल को भोजन की आवश्यकता थी। पलिस्तियों का यह अभ्यास था कि इसराइल के फसल तैयार होने तक प्रतीक्षा करें, तब आकर उसे लूट लें। इस वर्ष सदा की तरह वे आए और उनके भय से सब इसराइली भाग गए, परंतु शम्मा खड़ा रहा। उसने अपनी तलवार निकाली और फसल की रक्षा की। पलिस्तियों ने पूरे दल के विरोध मात्र एक पुरुष और परमेश्वर ने बड़ी विजय उसे दिलाई। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं दूसरा शामुएल की पुस्तक 23 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा हुआ है, फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुलाम नाम गुफा में आए और पलिस्तियों का दल रपाइम नाम तराई में छावनी किए हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिस्तियों की चौकी बेतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। मित्रों, ध्यान दीजिए, दाऊद का लालन पालन बेतलहम में हुआ था। उसने वहां के जीवनदायक जल के बारे में सोचा और कहा कि मुझे वहां का जल कौन पिलाएगा। मित्रों, मैं दाऊद की स्थिति को समझ सकता हूं। मेरे घर में भी एक कुआं है। कुछ समय पूर्व मैं वहां गया और मैं उस कुएं का पानी पीने के लिए रुक ही नहीं पाया। मैंने वह पानी निकाल कर पिया, मेरे जी में जी आ गया। मैं वही पानी पीकर बड़ा हुआ था। अब दाऊद भी उसी पानी की लालसा को कर रहा था, बेतलहम के कुएं के पानी को पीना चाहता था। उसने पानी लाने की आज्ञा तो किसी को नहीं दी थी, परंतु उसके शूरवीरों में से 3 ने पलिस्तियों की छावनी में घुसकर दाऊद के लिए पानी लिया। इस प्रकार वे शूरवीर कहलाए। मेरे मित्रों, मैं मत्तीर्च सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद में व्यक्त परमेश्वर की आज्ञा के बारे में सोचता हूं कि पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही हो। तब मैं पूर्व समय के उन मनुष्यों के बारे में भी सोचता हूं जिन्होंने वैरी की सीमा में घुसकर उन लोगों को सुसमाचार सुनाया जिन्हें सुसमाचार की आवश्यकता थी। उन प्रवर्तक प्रचारकों के बारे में सोचिए, एक के बारे में नहीं परंतु प्रेरित पौलुस और मार्टिन लूथर जैसे प्रचारकों के बारे में सोचिए, उनके अनुज प्रचारकों के बड़े दल के बारे में सोचिए जो परमेश्वर के वचन के प्रसारण के आरंभिक चरण से ही वैरी की सीमाओं को पार कर रहे हैं। ये लोग दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह के शूरवीर हैं। दूसरा शामुएल 23 अध्याय उसके 20 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोआदा का पुत्र बनाया था जो कबसेलवासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मुआवियों को मार डाला और बर्फ के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। मेरे मित्रों, मुझे यह बड़ा अच्छा लगा। इस पुरुष ने शेर को मार दिया। यह आसान काम नहीं था। इसने शेर को बर्फ में मारा था। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो वर्षा के बाद भूमि पर थोड़ा सा भी पानी हो तो आराधना में नहीं आते हैं। ऐसे लोग बनाया की संगति में नहीं बैठ सकते। वह तो बर्फ गिरने के समय भी बाहर था और वह एक महान व्यक्ति था। हम दूसरा शामुएल 23 अध्याय उसके 39 पद में पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, और हित्ती उरिया था, सब मिलाकर 37 थे। मेरे प्रियो, हित्ती उरिया भी दाऊद का एक शूरवीर था। इसी को दाऊद ने युद्ध में आगे भिजवा कर मरवा दिया था और यह दाऊद के लिए एक कलंक का टीका था। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और अध्याय 24 में देखेंगे जनगणना के लिए दाऊद को दंड। दाऊद ने एक और पाप किया, उसने जनगणना करवाई। अब तक तो दाऊद को मनुष्यों की अपेक्षा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए था। इस बार परमेश्वर ने दाऊद को ही उसका दंड चुनने दिया। दाऊद अपने आप को परमेश्वर की दया के आश्रय छोड़ देता है। परमेश्वर महामारी भेजता है। दाऊद औराना का खलिहान खरीदकर परमेश्वर की वेदी बनवाता है। उसे निर्मोल लेने के लिए दाऊद ने इनकार किया। इससे उसकी ईश्वर भक्ति और समर्पण प्रकट होता है। यह वही स्थान है जहां सुलेमान ने मंदिर बनवाया था। आइए देखें जनगणना। अनेक विचारक इसे पाप नहीं कहते हैं, परंतु मैं इसे दाऊद का पाप कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद द्वारा की गई जनगणना उसके अन्य पापों के तुल्य ही था। व्यवस्था के एक नियम का उल्लंघन संपूर्ण व्यवस्था की उल्लंघन है। इसके इस काम का अर्थ था परमेश्वर में भरोसा न रखना। आइए हम पढ़ें दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसके 1-2 पद। और यहोवा का कोप इसराइलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इसराइल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेर्शेबा तक रहने वाले सब इसराइली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। मित्रों, आरंभ में परमेश्वर ने दाऊद से जनगणना करवाई थी, परंतु उसमें परमेश्वर का उद्देश्य था कि दाऊद को प्रोत्साहित करे और उसे बल प्रदान करे। परमेश्वर उसे ढाड़स बंधाना चाहता था कि उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। मेरे मित्रों, विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि अंधकार में छलांग लगा दें। यह जुआ नहीं है और न ही अनुमान है। विश्वास एक निश्चित बात है। परमेश्वर आपसे कभी नहीं कहता कि किसी ऐसी बात पर विश्वास करें जो सच नहीं है। विश्वास चट्टान पर वरन एक निश्चित नींव पर आधारित होता है। प्रभु यीशु मसीह वह नींव है। अतः विश्वास खाली स्थान में छलांग लगाना नहीं है। मेरे मित्रों, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको विश्वास का जीवन जीना होता है और विश्वास से ही कुछ करना होता है और यह समझना होता है कि आप अपने प्रयास से या मात्रा में अधिकता के आधार पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से आज कलीसिया ने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखा है। इसका परिणाम यह है कि कलीसियाएं सभाओं में आत्मिक विजयों का उल्लेख कभी भी नहीं किया जाता है। मुख्य विषय होते हैं हमारे पास कितना पैसा है, हमने कितने बपतिस्मे लिए हैं, हमने कितने मसीह में नए सदस्य बनाए हैं। यदि ये आंकड़े प्रभावी हैं, तो हम सोचते हैं कि यह एक महान आत्मिक विजय है, और सच तो यह है कि यह कलीसिया की सबसे बुरी बात है। मेरे मित्रों, दाऊद जनगणना करके पाप करता है। क्यों? अब तक वह वृद्ध राजा था और भली भांति जानता है कि परमेश्वर ने उसके लिए एक नींव तैयार की है। वह यह भी जानता है कि वह शत्रुओं पर जय पा सकता है। उसे जनगणना की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज की कलीसिया का श्राप वह व्यक्ति है जो सदैव हिसाब लगाता रहता है और लिखता रहता है, परंतु उस आत्मिक विजय के बारे में कुछ नहीं जानता जिसका होना अति आवश्यक है। दाऊद यहां ऐसा ही कर रहा है। हम दूसरा शमूएल 24 अध्याय उसके 10-13 पद में पढ़ते हैं। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दर्शी था पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े व 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहें और तू उनसे भागता रहे व तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? आप सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने दाऊद पर ही छोड़ दिया कि वह दंड को चुन ले। परमेश्वर को दिया गया दाऊद का उत्तर प्रशंसनीय है। इससे प्रकट होता है कि वह एक ऐसा पुरुष है जो जानता है कि परमेश्वर पर भरोसा कैसे रखें। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहूंगा, दाऊद चूका, यह सच बात है। उसने पाप किया, परंतु चूकने वाले विश्वास के नीचे एक अचूक विश्वास था जो कभी नहीं चूका। मूल रूप से दाऊद परमेश्वर में विश्वास करता था, जैसा कि गाद को दिया गया उसका उत्तर प्रकट करता है। आइए हम पढ़ें दूसरा शामिल 24 अध्याय के 14 पद में। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े हैं क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने दाऊद के सामने तीन दंड रखे कि उनमें से एक चुने। दाऊद ने उनमें से एक भी नहीं चुना। उसने परमेश्वर से कहा कि वह मनुष्य के हाथ में पड़ना नहीं चाहता। यह एक बात है जो मैंने अपनी सेवा में सदैव परमेश्वर से प्रार्थना में कही है, हे मेरे परमेश्वर, मुझे ऐसी स्थिति में कभी नहीं आने देना जहां मैं मनुष्यों पर निर्भर करूं। सौभाग्य से आज मैं जब अपनी सेवा में पीछे मुड़ करके देखता हूं तो पाता हूं कि परमेश्वर ने मुझे कभी ऐसी स्थिति में नहीं रहने दिया जब मुझे किसी के तलवे चाटने पड़े। मेरे मित्रों, आज मुझे उन लोगों की सेवा को देखकर दुख होता है जिन्होंने बने रहने के लिए लोगों की चिगला चुट्टी, तलवे चाटे और उनकी चमचागिरी की। परमेश्वर उन पर दया करे। दाऊद मनुष्यों के अधीन होना नहीं चाहता था, वह परमेश्वर के हाथों में पड़ना चाहता था क्योंकि वह परमेश्वर पर भरोसा रखना जानता था। मेरे मित्रों, दाऊद को ऐसा करते देख कैसी अच्छी अनुभूति होती है। परमेश्वर ने इसराइल पर महामारी डालने का निर्णय लिया। दाऊद जानता था कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भला है। आपको और मुझे ऐसी ही अनुभूति होना चाहिए जब परमेश्वर हमें दंड देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे दंड भी देता है। अपने अनुभव से मैं आपको गवाही दे सकता हूं कि उसके दंड देने में कोमलता है, उसमें सुविधा है, आशीषें हैं। केवल वही आंसू पोंछ सकता है, केवल वही टूटे दिल को जोड़ सकता है, वही मन के घाव भर सकता है। डॉक्टर आपकी दुर्घटना के घाव को सील सकता है, परंतु मानसिक आघात केवल प्रभु यीशु ही चंगा करके आपको सर्वांग बना सकता है। मेरे मित्रों, आज हमें उसकी कैसी गहन आवश्यकता है। दाऊद औराना का खलिहान को खरीदता है। अब हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में आते हैं। दाऊद परमेश्वर के लिए भवन बनाना चाहता है। हम दूसरे शामिल की पुस्तक 24 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। ध्यान रखें, अरौना इसराइली नहीं, यबूसी है। तब हम आगे देखते हैं दूसरा शामिल 24 अध्याय उसके 19 से 21 पद में लिखा है, सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनाओ, इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। मेरे मित्रों, दाऊद खलिहान खरीदने का अपना प्रयोजन समझता है। दूसरे शामुएल की पुस्तक 24 अध्याय उसके 22 से 24 पद में आगे पढ़ते हैं, अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल है और दावने के हथियार और बैलों का समान ईंधन का काम देंगे। यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से प्रसन्न होवे। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझ से अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 सेकेल में मोल लिया। मेरे मित्रों, दाऊद का यह काम मर्यादापूर्ण था। काश परमेश्वर के जन यह शिक्षा ले। कुछ लोगों का मानना है कि परमेश्वर की सेवा में हमें पैसों की बात नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज सेवा में पैसों पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु दाऊद ने किया उसे भी आप देखें। अरौना दाऊद को भूमि निर्मोल देना चाहता था, परंतु दाऊद ने कहा, मैं अपने परमेश्वर को सेंत मेंत के बलिदान नहीं चढ़ाना चाहता, मैं इन्हें दाम देकर लूंगा। परमेश्वर उन सेवकों पर दया करे जो मुफ्त में मजा लेना चाहते हैं। मेरे मित्रों, मूल्य दो और परमेश्वर आपको आशीष देगा, सम्मानित करेगा। दाऊद का यह काम दिल को खोजने वाला काम है। क्या हम परमेश्वर को ऐसी भेंट चढ़ाना चाहते हैं जिसका हमारे लिए कोई मोल नहीं? परमेश्वर हमारी कृपणता क्षमा करता है। काश हम वैसे ही दान करें जैसे दाऊद ने दिया था। दाऊद परमेश्वर के मन का मनुष्य था। मेरे मित्रों, दाऊद के जीवन से हम बहुत ही गंभीर बातों को सीखते हैं। क्या आज आप परमेश्वर के निकटता में आते हैं तो क्या आपको परमेश्वर अपना जन कह करके पुकार सकता है? आपका व्यवहारिक जीवन कैसा है? मेरे मित्र, चाहे आप जैसे भी हों, हो सकता है कि आप बहुत बुरे हैं, पाप में घिरे हैं, जीवन अच्छे नहीं है, आप निराश ना हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वह आपके जीवन को शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि उसने दाऊद के जीवन को क्षमा किया और उसे अपना जन कहा। वह आपको भी अपना बेटा, अपना बेटी और अपना जन कह सकता है। क्या आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने अपराधों को उसके सामने मानने के लिए तैयार हैं? यदि आज आप अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, गुनाहों को मान लेते हैं तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ दूसरा शामुएल की पुस्तक भी यहाँ पर खत्म होती है। अगले अध्ययन में हम एक नए पुस्तक के साथ और एक नए अध्ययन के साथ मिलेंगे। तब तक आप प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी है, वो क्रूस निशाना है, वो क्रूस निशाना है, मंजिल वो हमारी है, जो क्रूस पे जाती है वो राह हमारी लंबा है सफर अपना, बढ़ते ही जाना है ताज रखा फिर, उस ताज को पाना है, उस ताज को पाना है, अब कस लो कमर अपनी, शैतान से लड़ाई है, वो क्रूस निशाना।